بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک شعبان اور آج کا دن یوم ولادت حضرت قاسم علیہ السلام، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یقیناً شعبان کی اس پربرکت ایام میں محفلوں کے میلادوں کے بغیر گھر میں بیٹھنا ہم سب کے لیے شاید زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. وہ لوگ، وہ مخیر حضرات جو محفلوں کا انعقاد کرتے تھے، جو میلاد اور محفلیں سجاتے تھے، ان دنوں گھر میں بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا. اور مخصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہ ایام مقامات مقدسہ، عمرہ، زیارات کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یہ لوگ اس سال ان تمام فیوضات الہی سے محروم ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے. یہ بھی ہم سب کے لیے ایک عظیم آزمائش ہے. یقیناً اللہ کا وعدہ ہے، انا مال اسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور ہے. اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسانیوں کا اور اس کے راستے کھولنے کا انتظار کر رہے ہیں. آج ہم نے اپنے کلاسز کا سلسلہ، جو کہ ہمارا اور آپ کا وعدہ تھا کہ ہم ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں کلاسز کا انعقاد کریں گے، تو الحمدللہ آج وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک عنایت ہے، ایک توفیق ہے، اور ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ایک موقع مل رہا ہے. جیسے کہ آپ کے، جو ہمارے کلاس کے تمام وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ دنوں میں بہت سارے میسیجز کیے، کالز کی کہ آپ آن لائن کلاس پڑھا لیں، ہمیں گھر میں بیٹھ کے بھی وہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے جو اس وقت حالات ہمارے سامنے ہیں. آپ سب کی فرمائش بھی اور میری اپنی ذمہ داری بھی تھی کہ حق ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم نے کلاسز کا آغاز کیا. اور آپ سب کو جو اس وقت آن لائن کلاس میں بیٹھے ہیں کلاس روم میں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید. اللہ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج میں اپنی کلاس کی عناوین بتا دوں، ہماری یہ کلاسز کل 10 دن کے ہیں، اور ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. آپ کو جیسے میسج کے ذریعے اطلاع مل چکی ہے، 2 موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک موضوع تربیت اولاد، خاندان کا اخلاق، جو اس وقت ہم سب کو اس کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے. سارے فیملی گھر میں ہیں اور گھر کے حالات، گھر کا سارا پریشر گھر کے کس بندے پہ پڑ رہا ہے. صبح شام گھر میں ماشاءاللہ کھانا پک رہا ہے، آنا جانا، اور سب سے بڑی بات ملازمین کی چھٹی ہے. خاندان کا اخلاق، اولاد کی تربیت، یہ اللہ نے ہم سب کو ایک گولڈن چانس دیا ہے کہ اپنے خاندان کو اس مرتبہ اور معیار تک پہنچائیں، اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کر لیں ان چند دنوں میں، اس قرنطینہ کے دنوں میں، تاکہ ہم اس عظیم مقصد الہی کی طرف گامزن ہو سکیں جس کا انتظار پوری دنیا کو ہے. بس ہمارا ایک موضوع خاندان اور اولاد کی تربیت، اور ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ امام وقت علیہ السلام کا ظہور، امام علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام قرآن کی نگاہ میں، اور شرائط ظہور کیا ہیں، ظہور کی نشانیاں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے 10 دنوں میں پڑھیں گے. آج تو ظاہر سی بات ہے پہلی کلاس ہے، تو میں نے آپ کو عناوین بتانے ہیں. جب ہم تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں تو تربیت اولاد کس عمر سے شروع ہوگی، کس عمر تک جائے گی؟ آج میں آپ کو اس کی ہیڈنگ دے دوں تاکہ کل سے آپ مائیں، والدین، ینگ بچیاں، بچے کاپی پینسل لے کر بیٹھیے اور یہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے. کیونکہ جب ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں کتابوں میں یا بولتے ہیں، ہمیں ایک چیز کا بہت احساس ہوتا ہے، کاش جب ہم ان نوجوانوں کی عمروں میں تھے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا، ان باتوں کا پتہ ہوتا، تو شاید ہماری اولاد اس سے کئی گنا بہتر، اور وہ بہترین اولاد ہوتے جن کا انتظار نبی مرسل کو رہا. بس تربیت اولاد ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ جو پوائنٹ بتاؤں گی اسے سب نے کاپی میں نوٹ کرنا ہے. एक और बात करती चलूँ, ये जो हमारी क्लासेस होंगी इसमें जिन जिन को जो जो सवालात हैं वो आप लिख सकते हैं, लिख के आप भेज दें या वॉइस भेज दें। उसके बाद अगले दिन 5 मिनट होंगे जो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब हम अपने मौजू का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, तरबियत औलाद। औलाद की तरबियत किस उम्र से किस उम्र तक जाती है? औलाद की तरबियत रिवायात आयात कुरान की रोशनी में शादी से पहले अपने आने वाली नस्ल की तरबियत करो। शादी से पहले, शादी के बाद, शादी से लेकर साहिबे औलाद होने तक औलाद की तरबियत का सिलसिला आगाज होता है, और ये सिलसिला अपने पीक तक तब पहुंचता है जब आप माँ बनने वाली या बाप बनने वाले खुशियों से गुजरते हैं, तब आपका प्रैक्टिकल तरबियत के अय्याम शुरू हो जाते हैं। यही वजह है, हदीस नबवी है, जब आप जवान हो गए शादी करना चाहते हैं, ये ना देखें कि मैं किस लड़की से शादी करूं, किस लड़के से शादी करूं, किस शक्ल सूरत का होना चाहिए, किस मिजाज का होना चाहिए, बल्कि ये देखो कि ये जिससे तुम शादी कर रहे हो वो मुस्तकबिल में तुम्हारे बच्चों की माँ कैसे होगी, तुम्हारे बच्चों के लिए वो बाप कैसे साबित होगा। जब आप ये सब कुछ देखकर फैसला करेंगे तो यकीनन वो कामयाब वालदे बनेंगे जिनके बच्चे दुनिया में दुनिया को हिला देने वाले कामयाब औलाद में से होते हैं। एक वाकया सुनाती चलूं, ये वाकया जरूरी है उनके लिए जो अपने औलाद की तरबियत के हवाले से हमेशा परेशान रहते हैं, और हमेशा एक टेंशन हम सबको रहती है कि अल्लाह करे हमारे औलाद वैसे हो जैसे होने का हक है। बहुत अजीम शख्सियत हैं, बहुत अजीम शख्सियत जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया और जिनकी शहादत ने पूरी आलम इंसानियत को रुलाया है। आप समझ गए मैं किनका जिक्र करना चाह रही हूँ। उनकी वालदा से सवाल हुआ, उनकी वालदा से जो किरमान शहर की रहने वाली थी किसी गांव की, सवाल हुआ आपने इतने अजीम बेटे की तरबियत कैसे की? उन्होंने फरमाया मैं बहुत छोटी थी, अपने वालिद के साथ मजलिस में गई। जब मैं मजलिस में गई तो खतीब ने कुरान की एक आयत की तफसीर शुरू की, और मुझे क्योंकि मेरा बचपना था समझ नहीं आई। जब मैं वापस मजलिस से लौटी मैंने अपने वालिद गरामी से पूछा, बाबा आज वो जो मौलाना साहब गुफ्तगू कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, वो बच्चों के बारे में कुछ बता रहे थे? तो मेरे वालिद गरामी ने फरमाया, मुझसे कहा बेटी मौलाना साहब कह रहे थे अगर कोई शख्स सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रत आयुन व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अगर इस आयत की तिलावत रोज एक तस्बीह करे, अल्लाह उसकी नस्ल में से ऐसे औलाद अता करता है जो दुनिया को हिला देता है। इस अजीम शख्सियत की वालदा कहती हैं, तब मेरी उम्र 7 या 8 बरस थी, मैंने तब से ये आयत पढ़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमतों से नवाजा और मेरा एक बेटा जूं जूं ये सितारे की तरह चमकने लगा, मुझे इस आए करीमा की तासीर अपने बेटे की सूरत में नजर आने लगी। और एक आए करीमा एक इंसान की शख्सियत को इतना बदल देती है, इतना बदल देती है कि उसने अपनी शहादत के बाद सीनों को दिलों को हिला दिया और हर आंख को अश्कबार कर दिया। बस इस अजीम शख्सियत की वालदा ने इनकी तरबियत अपने 7 साल की उम्र से शुरू की थी, जिसका नतीजा अल्लाह ने ऐसे औलाद अता की। बस नौजवानों, जवानों, वालदे, अब ये जो माएँ बहनें बैठी हुई हैं सामने, मैं देख रही हूँ कितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, वो कहेंगे खानम तकरीबन 100+ लोग आई थिंक इस वक्त ऑनलाइन हैं। अल्लाह आप सबको जजाए खैर दे इंशाल्लाह। देखिए ओके 60 तकरीबन लोग हैं जो इस वक्त हमें इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। जो हमारी तरह की माएँ हैं वो सोचेंगे हम क्या करें, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए। आप कभी ना घबराइए, जब हम अहले बैत और कुरान के दर पे झुक जाते हैं तो हूर बनाने वाले हुसैन करबला में भी थे, आज भी हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती ता कयामे कयामत ये कश्ती है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, इमाम हुसैन की कश्ती कश्ती निजात है। जो भी इस पे सवार होता है और जो इस पे सवार करने की कोशिश करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे हर जमाने का हुर बना देते हैं। यकीनन हमारी दुआएं अपने औलाद के हक में कभी भी जाया नहीं जाएगी, कभी भी। और वालदेन की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है। वालदेन की खसूसन खसूसन माँ बाप की दुआएं इंसान की तकदीरें बदल देती हैं। बस जो जवान हैं उनके पास टाइम है, जो हमारी तरह के वालदेन हैं जो इस उम्र के हैं, हमें भी देर नहीं हुई, अपनी दुआओं से अपनी औलाद की तकदीर हम बदल सकते हैं। औलाद की तरबियत शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चे की विलादत से लेकर पैदाइश से लेकर 1 साल तक की तरबियत तरीका डिफरेंट है। 1 साल से 2 साल तक के बच्चे की तरबियत का तरीका और है। 2 साल से 3 साल, यूं चलते हम 14 साल तक जाएंगे। ये जो 14 साल, हर साल की तरबियत का तरीका क्या है, अगले 10 दिनों में हम 14 साल तक के बच्चे की तरबियत, हर साल की तकाजे क्या हैं, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा उसमें हम 14 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनकी तरबियत में वालदेन का किरदार क्या होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो मैं एज ए टीचर आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। अगर आपके जहन में कुछ और चीज़ों का, कुछ सवालों का, कुछ अगर आपके जहनों में कोई मसले हैं, आप लिख के ज़रूर हमें भेज सकते हैं, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। बस औलाद की तरबियत शादी से पहले, शादी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद, यहाँ से तरबियत का आगाज शुरू होता है। एक सहाबी हैं, मस्जिद में कुछ लोगों ने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली, जब से आयत गुज़श्ता आयत जो आपने सुना दी उसके बाद हमारे दरमियान एक शख्स था, वो घर से बाहर नहीं निकलता, दिन रात रोता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ उसको बुला कर ले आओ। जब बुला कर लाए देखा नहीं हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, इतना रो रहा है, किस बात की? कहा, या रसूल अल्लाह, गुज़श्ता दिनों जो आपने आयत सुना दी उस आयत ने मेरी कमर को हिला दी है, मेरी नींदें उड़ा दी है। कहा, क्या सुना तुमने? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने ही फरमाया, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के ईंधन होने से बचाओ। अल्लाह के नबी रहमत ने सवाल किया, तो इसमें तुम्हारे घबराने वाली बात क्या है, परेशान क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, अपनी इबादत को मैं ठीक कर सकता हूँ, अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने शैतानी वसवसों पे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने अमल अच्छा बुरा कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अपने घर वालों को कैसे करूँ, अपने घर वालों को कैसे रोकूँ? अल्लाह के नबी रहमत सर झुका के घिरिया फरमाया, का तुम्हारी परेशानी वजह है कयामत के दिन वालिदैन से औलाद के बारे में सवाल होगा। कयामत के दिन वालिदैन से सवाल होगा, ये जो अमानत हमने तुम्हें दी थी औलाद की नेमत की सूरत में, तुमने इसकी तरबियत का हक अदा किया या नहीं? हजरते अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने बच्चों को जब वो कम सिन्नो साल हैं उन्हें कुरान की तालीम जरूर दो, उनकी अच्छी तरबियत और अच्छी अदब सिखाओ, उनका अच्छा नाम रखो और उन्हें उसूल दीन फुरू दीन की बातें बताओ इससे पहले कि कोई और इसके दिल में वो चीजें भर दें जो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है। लम्हे फिक्रिया है, आजकल का मुआशरा हम सबके घर की बात है, कोई नई बात नहीं है। आजकल का मुआशरा बच्चों के हम जज्बात और अंदर की फीलिंग का इतना ख्याल नहीं रखते जितना हम उनके फरमाइशों का और कपड़ों का, स्कूलिंग का, इन चीजों पे हमारा फोकस सब इस तरफ है जो उसकी बेसिक जरूरियात है, हम उससे थोड़ा सा गाफिल हैं, थोड़ा सा हम उसे हमने थोड़ी सी ढील दी हुई है। औलाद की तरबियत, उसके इमोशनल को समझना, उसके जज्बात को समझना और उसकी तन्हाइयों को अपनी मोहब्बत के साथ मुकम्मल करना। वालदेन ग्रामी, मैं खुद भी एक वालदा हूँ, वालदेन ग्रामी अपने बच्चों के लिए मालिक और अरबाब ना बने, अपने बच्चों के ऊपर हुकूमत मत करें, अपने बच्चों के साथ एक दोस्त बने। वालिद हैं आप, अपने बेटों के बेटियों के बेहतरीन दोस्त बन जाएं। आप वालदे ग्रामी हैं, अपने बच्चों की बेहतरीन दोस्त बन जाएं। जब आप और आपके बच्चों के दरमियान हाकिम और महकूम का रिश्ता ना हो, मालिक और अब्द का रिश्ता ना हो, बल्कि दोस्ती का रिश्ता हो और ये रिश्ता आप कायम रख सकें, तो आपकी औलाद कभी भी बुराई की तरफ कभी भी कदम नहीं उठा सकती, कभी भी बुराई का सोच भी नहीं सकती। बस अपने औलाद के साथ दोस्ती रखें, मोहब्बत रखें। औलाद से दोस्ती के लिए, औलाद के एतमाद को अपने लिए और अपना एतमाद उनके लिए हमेशा कायम रखने के लिए हमें खानदान की तरफ आना पड़ता है, जो कि खानदान माँ और बाप से मुकम्मल होता है। खानदान बनता कब है? बच्ची बच्चे की शादी हुई, एक खानदान, और अब इनके आगे नस्लें चली, इनके बच्चे हुए, ये एक खानदान कहलाता है, जो मुआशरा बाहर का एक मुआशरा, एक छोटा मुआशरा जो हमारे घर के अंदर है। औलाद की तरबियत के लिए सबसे पहले माँ बाप को एक पॉइंट पे होना जरूरी है। औलाद की अच्छी तरबियत के लिए सबसे पहले माँ और बाप का बाअदब होना जरूरी है। औलाद की अच्छी तरबियत के लिए माँ बाप का एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। ये जहन में रखिएगा, भूलिए नहीं ये बात। हमारी औलाद की तरबियत वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, बल्कि तरबियत वैसे होती है जैसे हम खुद होते हैं। जैसे हम खुद हैं तरबियत वैसी होती है, जैसे हम सोचते हैं वैसे तरबियत नहीं हो सकती। देखिए, सोचिए, हम क्या हैं? मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे की मदद है, एक दूसरे के साथ मेहरो मोहब्बत और शफकत है, एतमाद है आप इसमें। चलिए जनाब, आजकल छुट्टियां चल रही हैं, घर की बात करूं। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि फरमाते हैं, ज़मीन पर अल्लाह के कुछ मुलाज़मीन हैं और मैं नबी रहमत उन मुलाज़िमों के हाथों का बोसा लेता हूँ। असहाब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, वो मुलाज़मीन कौन हैं जिनके हाथों का बोसा आप लेना चाहते हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं, ये वो ख़वातीन हैं, ये वो मर्द हैं जो घर का काम करते हुए एक दूसरे का हाथ बढ़ाते। एक और रिवायत सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई मर्द घर में अपनी बीवी का हाथ बढ़ाए, कोई बेटा अपनी वालदा का हाथ बटाए, वो हाथ बटाते हुए काम करते हुए अगर उसके जबीन पे पसीना आ जाए या उसे थोड़ी थकन का एहसास हो, उस पसीने के बदले, उस थकन के बदले अल्लाह शोहदाए बदर के सवाब उसे अता करता है। शोहदाए बदर का सवाब उसके लिए जो अपने घर वालों की मदद करे। फिर फरमाया, अगर कोई खातून अपने शोहर के लिए एक गिलास पानी, शरबत, चाय लेकर आए और मोहब्बत भरी निगाहों से उसके सामने पेश करे, तो अल्लाह इस एक गिलास पानी, कप, जूस, इसके बदले 2 रकत मकबूल नमाजों का सवाब उस खातून को अता करता है जो इस करीमाना अंदाज के साथ अपने शोहर से पेश आती है। बस आजकल हम सबको शोहदाए बदर में शामिल होने का, जन्नत के दर्जात लेने का एक सुनहरा मौका मिल चुका है। आइए, घर में हैं, बच्चे भी बड़े भी, हाथ बटाया करें, मदद कर लिया करें, क्योंकि ये मदद करना, हाथ बटाना घर में मोहब्बत, उन्स, शफकत और घर में एक दोस्ती की फजा और एक मोहब्बत की फजा को कायम करता है। और अल्लाह करे हम सब एक दूसरे के हक में मददगार भी हों और एक दूसरे के हक में दुआगो भी हों। आज जो माएं क्लास में आई हैं वो कल जरूर आइएगा। कल मैंने आपको खाना बनाते हुए हम क्या नियत करें जिससे हमारे ये जो पका हुआ खाना, आजकल मुलाजमीन की भी छुट्टी चल रही है, जो खाना पक रहा है उससे हमारे बच्चों के अंदर वो तासीर जाए जो सूरह दहर में अल्लाह तबारक तआला ने बशारत दी है, उस तासीर को अपने हाथों के पके हुए खाने से अपने बच्चों में कैसे मुंतकिल कर सकते हैं, इसकी मैं इंशाल्लाह कल फार्मूला भी बताऊंगी और हदीसें भी बताऊंगी। हमारी तकरीबन क्लास का आधा घंटा टाइम गुजर चुका है, हमारे पास मजीद 25 से 30 मिनट हैं जिसमें हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। टाइम को कम करना है या बढ़ाना है या आप कमेंट्स करिएगा, उसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह टाइम में भी चेंजिंग ला सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मौजू, अपने वक्त के मजलूम इमाम, हमारी दुआओं का इंतजार है। वक्त के इमाम फरमाते हैं, एशियो ए मोमिनो, जब तुम करबलाए मुअल्ला जाकर मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हो, उस कुब्बे के नीचे जाकर मेरे जहूर की दुआ करना, क्योंकि मेरा जहूर तुम्हारे हाथों में। मोमिनात मोहतरम, माह शाबान है, सबसे अजीम महीना है, अजीम महीना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये महीना मेरा महीना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शाबान शारी मेरा महीना। और अल्लाह ने माह शाबान में जो रहमतें बरकतें दी हैं नबी रहमत को, और नबी रहमत वो तमाम रहमतें बरकतें उम्मत में बांटना चाहते हैं। आज आप टाइम निकाल के मफातिल जिनान खोलिए, मुनाजाते शाबानिया एक दफा उसका तर्जुमा पढ़े, अल्लाह क्या देना चाह रहा है। जानते हैं इस महीने किन की विलादत है? जानते हैं कौन आ रहा है? जानते हैं किन किन हस्तियों की विलादत है? इस महीने इब्तदा इमाम हुसैन की विलादत से होती है और इंतहा इमाम मेहदी की विलादत से होती है। और ये शायद आपको याद होगा, साल के 12 महीनों में एक महीना ऐसा है जिसमें गम नहीं, वो शाबान है, और एक महीना ऐसा है जिसमें खुशी नहीं, वो मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत का महीना और माह शाबान इमाम हुसैन की विलादत का महीना, तो समझ जाइए अल्लाह ने खुशी और गम का मेयार हुसैन को बनाया। खुशियों का मेयार हुसैन है, गम का मेयार भी हुसैन इब्ने अली है। और इस महीने 15 शाबान को जिनकी विलादत है, जानते हैं कौन है? जिनका इंतजार हजरत आदम से लेकर हजरत खातम तक ने किया। जानते हैं इस महीने किन की विलादत है? जिनका इंतजार हजरत खातम से लेकर इमाम हसन अस्करी तक ने किया। और जिसका इंतजार 1180 सालों से पूरी दुनिया कर रही है। जानते हैं इस महीने किनकी विलादत है? जी, इमाम मेहदी अलैहि सलाम, इमाम जमाना अलैहि सलाम, वो इमाम जिनके बारे में हम कहते हैं इमाम गायब, वो इमाम अलैहि सलाम जो नजरों से ओझल हैं, वो इमाम अलैहि सलाम अगर सोचा जाए वो गायब नहीं है, हम नहीं हैं। हमने कभी उस मजलूम को वैसे पुकारा नहीं जैसे पुकारने का हक था। आयतुल्लाह दानिशमंद फरमाते हैं, मैं क्लास में अक्सर आप लोगों से कहती हूँ, मैं ख्वाबों के उसमें नहीं रहती, ख्वाब हुज्जत नहीं है। किसी ने ख्वाब देखा, किसी ने ख्वाब देखा, भाई किसी के ख्वाब देखने से मुझ पे आप पे कोई अमल फर्ज नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो बिशारत हैं, कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो नवीद हैं। आयतुल्लाह दानिशमंद फरमाते हैं, एक नौजवान मेरे पास आया और उसका तबीयत, उसकी हालत ऐसी थी, वो नॉर्मल नहीं था। मजलिस खत्म हुई, मैंने उसको अपने पास बुला के पूछा कि तू इब्तदाए मजलिस से इंतहा तक इतना रोया, हुआ क्या है? कहा, किबला मैंने कल एक ख्वाब देखा। कहा, क्या देखा? मैंने ख्वाब देखा, मैं घर में बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ और घर में जो मस्त माहौल चल रहा है, दरवाजे पे बेल हुई, मैंने जाके पूछा कौन, तो आवाज आई, मैं सैयद मेहदी इब्ने हसन। मेरे जरा दिल खटका, मैंने कहा कौन से सैयद मेहदी? कहा, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तुमसे मिलने आया। कि जब उन्होंने ये कहा दरवाजे पे, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने देखा घर का माहौल अजीब है, टीवी पे कुछ नाजेबा चीजें हैं, कुछ सीडी वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। मैंने कहा, आका मौला आप सिर्फ 1 मिनट इंतजार करें, मैं अभी घर साफ करता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ। जल्दी से मैंने चीजें समेटी, मुझे 2 मिनट लग गए। मैं दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया, जब मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा गली के कोने से गुजर रहे हैं और मेरे दरवाजे से जा चुके हैं। मैंने पीछे से आवाज दी, मौला, मैंने दरवाजा खोल लिया, मुड़ के देखा, कहा मैं सुबह से जिन जिन शियों के घर गया हूँ सबने मुझे अपने दर पे 2 मिनट रुकने को कहा, किसी ने फौरन दरवाजा खोल के मुझे अपने घर में नहीं बुलाया। जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं पनाहगाह ढूंढ रहा हूं, मैं क्या करूं कि मेरे इमाम जब भी किसी मोमिन के घर जाना चाहते हैं। आइए सोचिए, अगर अचानक दस्तक दे, तैयार हो? अगर अचानक आकर कहें मैं सैयद मेहदी हूं, दरवाजा खोल लोगे? ये जो हमें घरों में बैठने का एक मौका मिला है, इस मौके से फायदा उठाओ, आओ मुहासिबा कर लो। अल्लाह अकबर, इमाम मेहदी अलैहि सलाम जिनके जहूर की निशानियां तकरीबन कम व बेश मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। सामीन, जहूर की कुछ निशानियां हैं, कुछ शराइत हैं। निशानियां पूरी हो रही हैं, शराइत अभी पूरी नहीं हुई। शराइत के पूरे होने का इंतजार है। क्या मतलब? निशानियां 1200 के करीब निशानियां हैं, जिसमें से 1195 निशानियां तकरीबन मुकम्मल है, और वो 5 हतमी निशानियां जिनके बगैर जहूर मुमकिन नहीं, उसके आसार भी हमें नजर आते हैं। ये है निशानियां। निशानियां कमोबेश आप भी इर्द गिर्द देखें अपने, आपको पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शराइत जहूर भी पूरी हुई। क्या मतलब? मिसाल दो, समझिए। मैंने खाना बनाया, बिरयानी दम लग गई, बिरयानी पक गई, तैयार है, खुशबू भी आ रही है, दम भी लग चुका है। क्या उसके खाने की शराइत पूरे हैं? क्या आपको भूख लगी है? क्या घर के तमाम अफराद घर में मौजूद हैं? मैं खाना निकालूं तो खाने वाले हैं? खाना पक चुका है, उसके खाने की शराइत भी पूरे हैं या नहीं? इमाम के आने की निशानियां कमोबेश मुकम्मल हैं, लेकिन क्या शराइत भी मुकम्मल है? जी जनाब, आज आपने नई बात कर दी शराइत की। वो शराइत कौन से हैं आपसे पूछ रही हूँ मैं, कौन से शराइत हैं? इमाम के आने की शराइत में से कुछ शर्तें ये हैं, लोग आमादा हों इमाम के लिए। आमादा हों का क्या मतलब है? आमादगी इस तरह से हो, इस तरह से जब हम कहीं प्रोग्राम करवाते हैं, जलसा करवाते हैं, सेमिनार, मिलाद, मजलिस, स्टेज तैयार होता है जी, है ना, फर्श बिछता है, कुर्सियां लगती हैं, तबर्रुक का इंतजाम सब कुछ होता है। आप खतीब को, पढ़ने वालों को कहते हैं, आइए जनाब ये मिंबर है, आप बैठे और नसीहत फरमाएं, ऐसे ही है ना, मजलिस पढ़े, मिलाद पढ़े, जश्न पढ़े। हमने पूरे कायनात के इमाम को बुलाना है, उस इमाम को जिन्होंने पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पूरी कायनात में इस इमाम ने कायम करना है। इस इमाम को जब हम बुला रहे हैं, क्या उनके बुलाने की कोई शराइत नहीं है? क्या फर्श ना बिछे? क्या साउंड सिस्टम ना लगे? क्या उनके आने के लिए इंतजामात ना हो? ये वो शराइत है जिसे इस पूरी दुनिया में शिया ने, हैदर कर्रार ने पूरा करना है जी। ये आप लोग सुन रहे हैं, वक्त इमाम की बहुत सारी उम्मीदें हम पर हैं। इमाम अलैहि सलाम की उम्मीदें, उनके बाजू, उनको वेलकम कहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। शराइत पूरे करने हैं, और शराइत पूरे करने के लिए ये जो मौका हमें घर बैठ के कुछ दिन सोचने का मिला है, आओ कुछ इस तरह करें कि इमाम को हम मनवा दें कि मौला हम आपके जहूर के लिए कुछ कर सकते हैं, जो काम आप हमारे जिम्मे लगाएं हम इंशाल्लाह उन शराइत पे, उन कामों पे पूरा उतर आएंगे, इमाम को राजी करें। अब कल के लिए मैं एक होमवर्क दूं फिर आगे बढ़ूं। सूरह नूह, आजकल आप व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं सूरह नूह सब मिलके पढ़े, क्यों? सूरह नूह, नूह अलैहिस्सलाम, सूरह नूह 29वें पारे में ये जहूर की बशारत है। सूरह नूह कल आपने तर्जुमे के साथ पढ़ के आना, और अभी हमारे पास तकरीबन कमोबेश एक हफ्ता टाइम है। मैंने आज आपको एक और होमवर्क देना है, वो ये है कि जब हम किसी मुल्क में किसी सदर, किसी वजीर आजम का इंतखाब करते हैं तो हम उसे वोट देते हैं, तो कम से कम 70-80%, कम से कम 1 करोड़, 1.5 करोड़ वोट उसे मिले तब वो जाकर वजीर आजम या सदर बनता है। हाँ मेरे अजीज सामीन, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे मोजिज भाई, जो आप सुन रहे हैं, हमने पूरी कायनात के हाकिम बादशाह को बुलाना है। क्या तैयारी है, क्या किया है उनके लिए? वो इमाम जिनके जहूर के बाद रिवायत है, लोग जब इमाम को देखेंगे हैरान होंगे, आप हैं, मैंने तो आपको देखा था, आपने तो मेरी फलां जगह मुश्किल हाल की थी, फलां जगह मैं आपसे मिला था। दुनिया का हर शख्स कहेगा हमने इमाम को देखा था। वो इमाम जो हमारे दरमियान है, हम पहचानते नहीं हैं उन्हें, उनके जहूर के दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब है, और हम सब उनके जहूर को इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से देखेंगे। आइए हम सब मिलकर उस मसीहा को बुलाने के लिए एक आलमी, इंटरनेशनल, एक ऐसा अजीम इज्तमा मनाएं, ऐसा अजीम कि जिससे हम अपने मौला को मनवा दें कि मौला हमने आपके लिए कुछ करना है और आपने आना है। वो काम जो आलमी इंटरनेशनल इज्तमा, वो क्या जी? घर में ही बैठकर। आइए 15 शाबान की शब से लेकर 24 रमजान तक पूरे 40 दिन बनते हैं, 40 दिन सब मिलकर। ये मैसेज आप सुन रहे हैं, इसका मैंने पोस्ट बनवा लिया है, ये मैं थोड़ी देर तक चला दूंगी, और ये मैंने मुख्तलिफ जबानों में बनवाया है, मुख्तलिफ लैंग्वेज में, जिस जिसके जहाँ जहाँ मिलने वाले, ले जाने वाले हैं, आप उन्हें भिजवा दें। 40 दिन हमने एक चिल्ला काटना है। क्यों क्यों काटना है? ये अंबिया की सीरत रही, ये उसिया की सीरत रही। जब मैं भी चिल्ला आपको बताती हूँ, पहले ये वाली बात सुन लें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से दूर थे, बनी इसराइल पे फिरौनियों का बहुत जुल्म रहा, बहुत जुल्म रहा। बनी इसराइल जब इस जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, इनके दरमियान उस दौरान नबी या रसूल नहीं थे, बल्कि अंबिया के वसी थे, जो कि उलमाए बनी इसराइल कहलाते थे। इन उलमा ने तमाम बनी इसराइल के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, आओ हम सब अल्लाह की बारगाह में इल्तजा करें, गिड़गिड़ा के मांगे, शायद अल्लाह हमें जिसकी बशारत दी है मूसा अलैहिस्सलाम, जिसने आकर हमें फिरौन के हाथों से बचाना है, शायद उसके आने में ताजील हो जाए। उलमा के कहने पर बनी इसराइल ने नुतबा शुरू किया, गिरिया शुरू किया, गिड़गिड़ा के मांगना शुरू किया। अल्लाह ने इनके रोने और इनकी दुआओं के सदक़े से, दो रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक 400 साल, एक रिवायत के मुताबिक 150 साल जनाब मूसा की आमद में अल्लाह ने टाइम को शॉर्ट कर दिया। यानी वो मूसा जो 400 साल बाद आना था, बनी इसराइल की दुआ और नुतबा की वजह से अल्लाह 400 साल पहले इनको जनाबे मूसा दे दिया। अच्छा, अगर बनी इसराइल अपनी गिरिया नुतबा से अपने नबी की आमद में ताजील तकदीर को बदल सकते हैं, तो उम्मते मुस्तफ़ा हैं हम अली मुर्तज़ा के मानने वाले हैं, हमारे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे अजीम हस्ती हैं, जिनकी याद में एक आंसू क़यामत में शिफात की बख्शिश, शिफात और बख्शिश है। क्या हमारा गिरिया, हमारा रोना वक्त के इमाम के लिए क्या तकदीरें नहीं बदल सकता? जी सामीन मोहतरम, माह मुबारक की रमज़ान में शब कदर है, शब कदर में तकदीरें लिखी जाती हैं। पिछले साल माह रमज़ान की शब कदर हमारी तकदीरें लिखी गई थी। ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, ये लिखा गया था। आइए इस साल तकदीर हम लिखवाएं, इस साल तकदीर हम अपनी दुआ से बदल दें। आइए इस साल शबे कदर की तकदीर में इमाम का जहूर ले लें। 15 शाबान से लेकर 24 रमजानुल मुबारक तक पूरे 40 दिन रोज शाम रात 10 बजे एक मरतबा ज़ियारत आशुरा, 133 मरतबा अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयकल फरज, और एक मरतबा दुआए इस्तगासे इमाम ज़माना इलाही अज़ुमल बला व बरीहल खफा वाली दुआ। ये तीन अमल हम 15 शाबान की रात से लेकर 24 रमज़ान तक अल्लाह की बारगाह में इस इल्तिजा को, इस दुआ को पढ़ते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती को, दामन को थाम कर इस दुनिया और इस मजलूम आवाम को, इस बेबस आवाम को जो इस वक्त जुल्म के कटेरे में है और इस वक्त बीमारी के दहाने के पास रोज नए से नए मैसेज आ रहे हैं, अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, ये जहन में रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला। हमारा अल्लाह अल्लाहु अकबर है। वो बहुत सारी दज्जाली ताकतें, वो बहुत सारे वो कुवतें जो इंसानों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, यकीनन उनके गरेबान पकड़ेगा। और हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन थामते हुए इस जमाने को, आज के मजलूम के लोगों को साहिल जहूर तक पहुंचाना है, और ये काम हम करेंगे। और हम अपनी दुआओं के नतीजे में इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम, अली अकबर, इन अजीम हस्तियों का सदका देकर, इनका वास्ता देकर, हम अल्लाह से अपने इमाम का जहूर इस महीने और अगले महीने इंशाल्लाह शब कदर की रातों में अल्लाह से ये तकदीर बदलवाते हुए जहूर अपने किस्मत में लिखवाएंगे। और इस अमल खैर में आपने हमारे साथ देना है, हमारा बाजू बनना है, हमारे मददगार बनना है। आप समझिए, जहां जहां तक आप पैगाम पहुंचा सकते हैं, जहां जहां तक आप बता सकते हैं, जिन जिन तक आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं, हमारे पास चंद दिनों का टाइम है, मिलकर वर्किंग करेंगे। ये मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है, ये तमाम मुंतजरीन आलम की तरफ से है। ये कायनात में जितने लोग कश्मीर में, यमन में, फिलिस्तीन में, इराक में, चाइना के मजलूम मुसलमान अवाम, ऑस्ट्रेलिया के, इटली के मजलूम अवाम, जो इस वक्त एक बेबसी और कर्ब से गुजर रहे, हम उन सब की नुमाइंदगी में, उन सब की तरफ से ये चिल्ला, चिल्ले महदवियत, चिल्ले इस सदी का अजीम शान इज्तमा, अजीम शान चिल्ला, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम के जहूर की दुआ हो, वो हम सब मिलकर करेंगे। और आप सबने इसे अपना काम समझकर आगे लोगों तक पहुंचाना है। वो जो चंद चीजें मैंने होमवर्क दी, वो अभी आपको साथ साथ मिलता रहेगा इंशाल्लाह। फेसबुक में आपको मिल रहा होगा, इस वक्त डिजिटल है ना, सिस्टम फास्ट है, सारा लिख के सामने दिखा दिया। माशाल्लाह टीम भी हमारी स्ट्रांग टीम है। अल्लाह तबारक व ताला इन सबको, हम सबके दिलों में एक ख्वाहिश थी, मौला हमने कोई काम करना है, लो जी अब कर लो काम, कर लो काम, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, जो करके अच्छी तरह से करके दिखाता है अल्लाह वक्त की इमाम, उसे एक और काम, फिर एक और काम, फिर एक और काम। और अल्लाह करे जहूर के रास्ते के कांटे चुनने वालों में हम सबका नाम शामिल हो जाए इंशाल्लाह। इसके अलावा जो अभी मेरे सामने लिखा हुआ है, सूरह नूह, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बशारत है जी, ये होमवर्क है। सूरह नूह आपने इंशाल्लाह कल पढ़ के आना है और तर्जुमा देख के आना है। उसके बाद हमने इस पे बहुत तफसील से, डिटेल से गुफ्तगू करनी है, और अल्लाह हम सब के, आप सब के तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हमारे पास अभी मजीद तकरीबन 10 मिनट का टाइम है, ऐसे ही है ना, हमारे पास 10 मिनट का टाइम अभी है हमारे पास, ये 10 मिनट हम जाया होने नहीं देंगे। आजकल रूटीन क्या चल रही है, रातों को जागना, दिन को सोना, ऐसे ही। और जब हम रातों को जागते हैं, यकीनन फजर तक हम जागे होते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, बच्चों, नौजवानों, जवानों जो इस वक्त सामने बैठ के सुन रहे हो, मेरे बच्चे, तुम पे तुम्हारी माँ की बड़ी उम्मीद है। एक काम करना, रात भर जो मसरूफियतें चलती रहे, फजर की नमाज के बाद दुआए अहद जरूर पढ़ लेना, दुआए अहद एक मतलब उसका तर्जुमा पढ़ना, तर्जुमे के बाद उसकी अरबी पढ़ना। अगर कोई शख्स 40 दिन सुबह के टाइम तुलू ए आफ्ताब से पहले दुआए अहद की तिलावत करे, दुआए अहद हाँ इमाम से मनकूल है, अगर वो मर गया, इमाम का जहूर नहीं हुआ, वो मर गया, रिवायत मासूम ने जमानत दी, फरमाया अगर कोई शख्स दुआ अहद पढ़े और वो अगर इमाम के जहूर से पहले मर जाए, तो उस शख्स की मानंद होगा जो इमाम के खेमे में इमाम के साथ जिसने जिंदगी गुजारी। और जब इमाम अलैहिस्सलाम का जहूर होगा, अल्लाह उसे कब्र से उठाएगा, दो फरिश्ते उसके कब्र में जाएंगे। ये हमारा अकीदा है, हम शियों का अकीदा है कि लोग मरने के बाद, इमाम अलैहिस्सलाम के जहूर के बाद, जो खालिस मोमिन है वो भी उठाए जाएंगे, जो कट्टर दुश्मन और मुनाफिक है वो भी उठाए जाएंगे। और इंशाल्लाह इन 10 क्लासों के बाद फिर हमारी जो नई क्लास का आगाज होगा, उसमें हमने मौजू जो हमने सोचा है, इमाम के जहूर के बाद क्या होगा, जहूर के बाद किस किस ने पलट के आना है, कौन कौन जिंदा होगा, ये बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही जिसे कहते हैं पेचीदा मौजू है, जिसे रिजअत कहते हैं। हम इंशाल्लाह इन 10 क्लासों के बाद रिजअत पे भी गुफ्तगू करेंगे। अगर कोई शख्स दुआए अहद पढ़ने के बाद अगर मर जाए, अल्लाह उसे मरने के बाद दोबारा लौटा देता है और लौटा कर फरमाता है, जाओ अपने वक्त की इमाम की मदद करो, बस दुआए अहद जो भी पढ़े वो घाटे में नहीं रहता, जिंदा रहे इमाम के सिपाहियों का एक अजीम सरदार बनेगा, अगर मर जाए तो कब्र से लौटाया जाएगा। हर हाल में अपने वक्त के इमाम के साथ रहेगा इंशाल्लाह। और दुआए एहद फजर की नमाज के बाद जवानों नौजवानों भूलो नहीं, माएँ बहने बेटियां आप भी इसी तरह दुआए एहद की तिलावत करें। और अगर आपको तिलावत में दिक्कत है मुश्किल है कोई मसला नहीं है, आप उसकी जो है किसी कारी साहब की वीडियो या ऑडियो भी सुन सकते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से जिन जिन को जो जो सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से एक तौफीक है, आपको मैंने सूरह नूह का होमवर्क दे दिया, इसी में हमारा कुरान तफसीर कुरान का भी सिलसिला ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है और कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है। कायनात में वाहिद वो लोग वो कौम जो कुरान और अहले बैत को लेकर चलते हैं आगे, उन्हें कहते हैं शियान हैदर करार, और इमाम अलैहिस्सलाम की उम्मीदें भी इन्हीं लोगों से हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने इमाम की आमद का इंतज़ार शबो रोज़ करते हैं। मेरे ख्याल में आज की क्लास का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अल्लाह आप सबके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आज जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप जानते हैं जनाब कासिम कौन है? जी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे। और क्या जानते हैं इनके बारे में? 13 साल के थे या 14 साल, और क्या जानते हैं? बहुत मजलूमाना शहीद हुए। आप जानते हैं जनाब हजरत कासिम हाफिज कुल कुरान थे। मौला अली नबी करीम जनाब सैयदा की रिवायतों के हाफिज थे। क्या आप जानते हैं बसीरत और मारिफत की किस मंजिल पर थे कि इनकी तरबियत 3 इमामों ने की थी? जानते हैं जनाब कासिम कौन है जिनकी रजस खानी, जिनके अशआर ने 14 बरस का एक नौजवान जब मैदान की तरफ आता है, इनकी रजस खानी ने यजीद के लश्करों को ऐसे बिखेर दिया था, ऐसे बिखेर दिया कि जमाने को याद दिला दिया था अहले बैत के घराने का, बच्चा हो या बड़ा हो उनके रगों में हैदर कर्रार का खून है, और वो जहां भी खड़े होते हैं जमाने के खैबर के दर को उखाड़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। इनका तिफले सगीर मुस्कराता है तो दुश्मन के सफों में फूट पड़ जाती है, जब इनके नौजवान तलवार नयाम से निकालते हैं तो दुश्मन लर्जा व नाम होता है, और इनके अली अकबर जैसे जवान मैदान में आते हैं तो ताकयाम कयामत जवान की आजान कानों में गूंजती रहेगी। आज का दिन सबको मुबारक हो, अल्लाह आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आज की क्लास के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादो आबाद रहें, खुश रहें।